الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس مختصر سے خطبے اور دعاؤں کے ساتھ ہم آج سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنا شروع کر رہے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 5 سے. پیچھے یعنی اس سے پہلے جو ہے یعنی بقرعید سے پہلے اور بیچ میں اور سفر کی وجہ سے چھٹیاں کافی ہو گئیں ان سے پہلے سورۃ النمل کی تفسیر ہم نے اس کلاس کے اندر پڑھ کے مکمل کری تھی. قدرتاً آج صبح خواتین میں بھی ایک نئی سورت شروع ہوئی ہے, سورہ بنی اسرائیل, اسراء المعراج والی سورت, اور وہ بھی جلد نمبر 5 سے ہی ہے میں ہی ہے, اور مردوں میں سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے. تو شروع کی 6 آیات کی ابھی تلاوت کی گئی, تو ان کا ہم پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, پھر خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل اس کے بعد, جیسا کہ ہماری ترتیب ہے اور معارف و قرآن کی بھی یہی ترتیب ہے, اسی کو ہم فالو کرتے ہیں اس کلاس میں. تو اللہ رب العزت سورہ یوسف کے اندر جو کہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 111 آیتیں ہیں, 111 آیتیں. سبحان اللہ, مجھے ذہن میں آیا کہ ایون جو سورہ بنی اسرائیل شروع کی ہے اس میں بھی سبحان اللہ 111 ہی آیتیں, ایگزیکٹلی سیم نمبر آف آیات, اور وہ بھی ظاہر مکی صورت ہے, یہ بھی مکی صورت ہے, اور اس میں بھی 12 رکوع ہیں. اللہ اکبر, یہ ابھی صاحب اس کی نظر سے اور ذہن میں بات آئی. مکی صورت میں باقی آگے لکھا ہوا ہم دیکھیں گے کہ 4 آیات اس کی ایسی ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی, لیکن چونکہ اکثریت جو ہے وہ آیات کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اس وجہ اس کو مکی صورت کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را, یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں جن کا ترجمہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں. تلک ایک اشارہ کرنے کے لیے اسم استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر, اسم اشارہ ہے یہ. آیات, آیتن کی جمع ہے, نشانیاں, یعنی جو کسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہو چیز, اس کو اس کی نشانی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں آیات, لیکن یہاں پر جو ہے وہ کتاب مبین یعنی خاص جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے, جبکہ جو سورہ بنی اسرائیل آج صبح کو ہم پڑھا رہے تھے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آیاتینا یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی, ٹھیک ہے نا. تو اب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جب ہو تو پھر اس میں واقعات اور معاملات اور بہت ساری یعنی اللہ کی ساری مخلوق اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پر چونکہ آیات الکتاب المبین اس کو قید کر دیا کہ جو قرآن مجید کے اندر آیات, یہاں پر ان آیات کی بات ہو رہی ہے, اور وہ آیات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرنے والی یعنی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ کتاب کے اندر منقول ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ قسم کی آیات ہو گئی, اور بہت ساری آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب کے باہر ہیں, مخلوقات کے اندر جو اور آیات ہیں. تو تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک کھلی اور واضح کتاب کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اس کے اندر پہیلیاں نہیں بجوائی گئی، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ایسی کمپلیکسٹیز نہیں ہیں کہ جو کہ کسی کے سمجھ میں نہ آ سکے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بے شک پوشیدہ تو رکھی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر کھولی، جیسے حروف مقطعات، ٹھیک ہے، اور متشابہات والی جو آیات ہیں تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے تو کھلی ہوئی ہیں. باقی جو اس کے مسائل ہیں وہ علماء کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور علماء کرام جو ہیں وہ واسطہ بن کر کے عوام الناس تک وہ مسائل پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بشیر، بشارت اور نذیر والی آیات ہیں، ڈرانے والی اور خوشخبری دینے والی آیات، وہ تو عوام الناس کے لیے بھی بالکل کلیئر ہیں. تو یہ کتاب المبین کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، ٹھیک ہے، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، جس کا کہ پچھلی آیت کے اندر ذکر تھا، کتاب المبین، اس کو ہم نے نازل کیا قرآنا عربیا، ایک عربی زبان کے اندر پڑھنے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، قراءت کرنے والی کتاب. کیونکہ قرآن کا ایک مفہوم جو ہے لفظ قرآن کا، کہ جس لفظ جس کتاب کو پڑھا جائے، قراءت کی جائے. ٹھیک ہے، تو ایک پڑھنے والی، قراءت کرنے والی عربی زبان والی کتاب کے طور پر ہم نے اس کو نازل کیا. ٹھیک ہے، کتاب المبین کو، قرآن عربین کے طور پر ہم نے نازل کیا. کیوں قرآن عربین کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون. ٹھیک ہے، کہ تاکہ تم سمجھ لو، تمہاری عقل میں یہ آ جائے، یا تم اپنی عقل کو اس کے اوپر لگا سکو، تم اپنی عقل کو استعمال کر سکو. بلکہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ تاکہ تمہاری عقل جو ہے نا وہ زیادہ شارپ ہو جائے، زیادہ تیز ہو جائے، زیادہ سمجھ والی ہو جائے، تمہاری عقل جو ہے وہ زیادہ کام میں آنے والی ہو جائے. ٹھیک ہے، تاقلون کہ مختلف، یعنی یہ سارا مفہوم اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تم سمجھ لو اس کتاب کو، کیونکہ تم عربی ہو، اور میں ہم نے عربی زبان کے اندر اس کتاب کو نازل کیا، تو تم اس کو سمجھ لو گے. ٹھیک ہے، اور تاکہ تم عقل مندی کا مظاہرہ بھی کرو، اپنی عقل اس کے اندر لڑاؤ، اور یہ بھی کہ تمہاری عقل جو ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو جائے. ٹھیک ہے، تم اپنے عقل و شعور کو جو ہے وہ صحیح سے استعمال کرنے کے قابل بن سکو. جب تم اس قرآن کو پڑھو گے، ٹھیک ہے، اور عربی زبان کو سیکھو گے، تو تمہاری عقل جو ہے نا وہ فائدہ مند ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی ابلیٹیز جو ہے وہ، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو جائیں گی. اسی وجہ سے عربی سیکھنا جو ہے نا، اس کا عقل کے بہتر ہونے سے بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، جو عربی سیکھتا ہے تو اس کو یہ والے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں. نحنو نقص علیکا، ہم قصص بیان کرتے ہیں تمہارے اوپر، علیکا آپ پر. یہاں پہ کاف ایک پروناؤن ہے، ضمیر ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کو احسن القصص، سب سے اچھا قصہ، یا بہت اچھا قصہ، احسن، ٹھیک ہے، ایک بہت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں. بما اوحینا، اس واسطے کہ اوحینا الیکا، ہم نے بھیجا آپ کی طرف اس قرآن کو، ٹھیک ہے، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے اوپر ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. اس وحی والے قرآن کے واسطے سے، یا اس واسطے کے، یعنی اس وجہ سے کہ بھیجا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن. تو جب ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو بھیج دیا، تو اس قرآن کے اندر جو ہے نا یہ بہترین قصہ ہے، یہ بھی آپ تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، और इन कुंता मिन कबल ही, तू था इससे पहले, यानी इससे पहले जो थे ना वो आप, अलबत्ता यानी ये जो लाम है लमिना के अंदर जो लाम है ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, लाम ताकीद। मिनल गाफिलीन, आप गाफिल थे इससे, गाफिल थे इससे का मतलब क्या, इस किस्से से गाफिल थे, यानी इस किस्से का आपको इल्म नहीं था, ठीक है, आप बेखबर थे इस किस्से से, तो हमने वही नाजिल करके आपको इसकी खबर दे दी, ठीक है। तो हमने आपको पैदाइशी तौर पर हर किस्म के उलूम दे करके नहीं भेजा, ये सारे के सारे उलूम जो है आपके पास पहले से मौजूद नहीं थे, बल्कि आपके पास पहले कोई इल्म मौजूद नहीं होता था, फिर हम आपको जब वो इल्म दे देते थे तब वो आप उसके हामिल हो जाते थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब होने की नफी बहुत सारे मकामात पर कुरान से हो जाती है, ठीक है, ये हर चीज आपसे को नहीं पता, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो खबरें दी उनसे नबी अलैहिस्सलाम का इल्म बढ़ा, और बेशक तमाम मखलूकात के मुकाबले में सबसे ज्यादा खबरें अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दी। इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीही, जिस वक्त कहा यूसुफ ने अपने बाप से, जिस वक्त, तो इसका तर्जुमा जब से किया जाता है, और जब इस तरह से कोई वाकया बयान करना शुरू करते हैं तो इसका तर्जुमा ऐसे किया जाता है, जैसे यानी बामुहावरा तर्जुमा ऐसे किया जाता है कि याद कीजिए वो बात, ठीक है, या जिक्र कीजिए उस वक्त का जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा। अब जिक्र तो अल्लाह ताला कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को भी कहा जा रहा है कि अब आप जो है ना इन आयात की तिलावत जब अपने सहाबा के सामने करेंगे तो अब उनके सामने भी आप जिक्र कीजिए, ठीक है, तो पहले तो आप तिलावत कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप तफसील बयान कीजिएगा इस वाकये के लिए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इस वाकये के बारे में बहुत सारी और बातें भी कही जो कि कुरान मजीद के अल्फाज में मौजूद नहीं है, तो वो वही गैर मतलू कहलाई, और उसमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये की बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं, ठीक है। तो याद कीजिए उस वक्त को जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बू, या अबती, तो इसमें प्यार है, मोहब्बत है। इन्नी रअईतु अहद अशरा कौकबन, बेशक मैंने देखा 11 सितारों को, कौकब सितारों को कहते हैं स्टार्स, और वश्शम्स वल कमरा, और सूरज को और चांद को, रअईतु हुम, मैंने देखा उनको, ली साजिदीन, मुझे सजदा करते हुए, यानी मैंने जब उनको देखा तो वो मुझे सजदा कर रहे थे या मेरी तरफ सजदा रेज हुए हुए थे, ठीक है, यानी अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं। रोया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर, देखा का लफ्ज इस्तेमाल किया, रई थी, जैसे कि इंसान जागते में देखता है, लेकिन तफसीर से हमें पता चलता है कि ये उन्होंने जागते हुए ये चीजें नहीं देखी थी बल्कि ख्वाब के अंदर ये चीजें देखी थी। काला या बुनैया, तो उनके वालिद साहब ने जवाब दिया या बुनैया, ये भी मोहब्बत वाला खिताब, ए मेरे प्यारे बेटे, ठीक है। ला तकसुस रोया का, अपनी रोयत को, यानी ये जो तुम्हें चीज नजर आई है ना, तो इस चीज को, इस यानी रोया को, इस ख्वाब को, ना तकसुस, तुम बयान ना करो, ठीक है, तुम इसकी स्टोरी मत सुनाना, कसस स्टोरी को कहते हैं, कहानी को, तुम ये मत सुनाना, अला इख्वाती का, अपने भाइयों के सामने, इसको बयान ना करना अपने भाइयों के सामने, फ यकीदू लका कैदा, फिर वो बनाएंगे तुम्हारे वास्ते कुछ फरेब, कादा यकीदू, या कादा या कादा यकीदू ही होता है ना, कि वो कुछ प्लान करेंगे तुम्हारे खिलाफ, प्लान करना, ठीक है, वो तुम्हारे, यानी और ये प्लान जो है ना ये पॉजिटिव मीनिंग में नहीं है बल्कि फरेब की मीनिंग में, यानी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ तदबीर करेंगे तुम्हारे खिलाफ, फयकीदु लका कैदा, कैद कहते हैं कैद शैतान है, ठीक है, शैतान का जो फरेब है, शैतान का जो धोखा है, या शैतान की जो तदबीर है वो जईफ है, तो वो तदबीर करेंगे तुम्हारे खिलाफ और अच्छे से तदबीर करेंगे, जो तो आगे मफूल मफूल मुतलक के तौर पर कैदन लेकर के आए, यानी खूब अच्छे से वो तुम्हारे खिलाफ है तदबीर करेंगे। अच्छी तदबीर नहीं करेंगे, बुरी तदबीर करेंगे, लेकिन लग के करेंगे तुम्हारे खिलाफ तदबीर। इन न शैतान अनिल इंसान अदूवम मुबीन, ये बेशक शैतान तो इंसान के लिए दुश्मन है, खुला दुश्मन, यानी इसके दुश्मन होने में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो इंसान का दुश्मन है, ठीक है। आगे तफसीर में पढ़ेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने भाइयों के फरेब का और तदबीर का जिक्र करने के बाद एकदम से शैतान को क्यों ले आए, ताकि ये ना समझें कि भाई ही जो है ना वही मेरे असल दुश्मन है, असल दुश्मन तो पीछे शैतान है, जो कि भाइयों को वरगला करके तुम्हारे खिलाफ तदबीर करवाएगा, ठीक है। तो तज़किरा है शैतान, शैतान का तज़किरा, ठीक है, ये हमें कुरान मजीद से जा बजा मिलता है, जा बजा नजर आता है कि बार बार शैतान का तذکرہ, कि कहीं तुम शैतान को भूल ना जाओ, ठीक है, क्योंकि जो अपने दुश्मन को भूल जाता है उससे ज्यादा बड़ा नुकसानदेह और कोई नहीं होता। कि दुश्मन को भूल जाने का मतलब है कि आप दुश्मन से गाफिल हो गए, अब दुश्मन से बचने की एहतियाती तदाबीर आप नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आप भूल गए दुश्मन को। या ये कि इंसान दुश्मन को दुश्मन समझना ही छोड़ दे, वो उसको जो है वो समझे कि ये तो मेरा दोस्त है, ठीक है, या ये कि वो उसको समझे कि ये तो मेरा दुश्मन नहीं है, ठीक है, कोई न्यूट्रल सा बंदा है, ऐसे ही बस पैसर पैसिंग बाय है ना, ऐसे ही बस गुजरने वाला कोई कोई है, ये मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको दुश्मन समझना छोड़ दे, तो ये उससे भी बड़ा नुकसान कि दुश्मन को दुश्मन समझना छोड़ दिया, तो अब जो है वो दुश्मन तो फिर कल को वो दोस्ती लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन असल में वो दुश्मन ही कर रहा होगा, ठीक है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हमें जहां अपनी याद दिलाते हैं, यानी दोस्ती याद दिलाते हैं, ठीक है ना, दोस्तों की याद दिलाते हैं, नबियों की याद दिलाते हैं, उनका तस्करा कर करके, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम के अंदर हमें दुश्मन की भी याद दिलाते रहते हैं। और जो भी इस हकीकत को समझता है तो वो फिर अपने जानने वालों को, अपनी मोहब्बत करने वालों को दुश्मन याद दिलाता रहता है, ठीक है, जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फौरन दुश्मन की याद दिलाई। वकजाने का यजतबी का, और ऐसे ही यजतबी का वो बरगुजीदा करेगा तुझको, तुझे पसंद कर लेगा, इजतबा यजतबी इजतबाअन हुआ मुजतबियन या मुजतबी मुजतबा, ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के नामों में से एक नाम जो है वो मुजतबा भी है, ठीक है, तो मुजतबा क्या मतलब कि वो आपको यानी बुजुर्ग कर देगा, बड़ा कर देगा, इज्जत वाला बना देगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को भी कह रहे हैं कि इस तरह से जो है ना वो होगा क्या, यानी अब बहुत लंबा एक किस्सा चलेगा और इवेंचुअली जो है ना वो अल्लाह ताला तुम्हें रब्बू का, क्योंकि आगे रब्बू का स्पेसिफिकली बता दिए कौन तुम्हें बुजुर्ग बनाएगा, रब्बू का तेरा रब, ठीक है, आपको बरगुजीदा बनाएगा, आपको बड़ा बनाएगा, वयुअल्लिमुका और आपको इल्म अता करेगा, मिन तावील अल अहादीसी अहादीस की तावील का, ठीक है, इन्होंने कैसे तर्जुमा किया है कि तुझको ठिकाने पर लगाना बातों का, ठीक है, यानी बातों की समझ अता करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ख्वाबों की तावीर, ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन का भी इल्म अता करेगा, और दुनिया के अंदर भी हिकमत अता करेगा, बात की समझ गहराई तक पहुंच जाना, बात की तह तक पहुंच जाना, ठीक है, हकीकत को समझ लेना। अगर कोई जाहिरी तौर पर अच्छी चीज नजर आ रही है लेकिन पीछे जो है वो बुराई है, तो उसकी भी समझ अता करेगा। अगर कोई पीछे अच्छी चीज है लेकिन जाहिरी तौर पर बुरी नजर आ रही है, तो उसकी भी समझ अता करेगा, ठीक है। और ये लफ्ज तावील का जो लफ्ज है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इस्तेमाल होता है उर्दू जुबान के अंदर, ठीक है, कि कोई असल में तो अच्छा इंसान है लेकिन उससे जो है वो कोई बुरा फेल सादिर होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसकी तावील कर लेना, ठीक है, कि नहीं ये बुरा असल में बुरा नहीं है, बल्कि इसकी तो हकीकत ये है, है, तो ये जो है ना, ये एक एक फन है, या एक हुनर है, या एक एक एबिलिटी है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम बातों की तावील करने के काबिल हो सकें। ठीक है, और जैसे कि आप सुनते रहते होंगे कि इस दौर के अंदर इस तावील करने की जो सिफत है, या तावील करने की जो सलाहियत है ना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है अपने ईमान की हिफाजत के लिए। क्योंकि शैतान जो है वो क्या कर रहा है इस दौर के अंदर, खास तौर पर बहुत ज्यादा ये कर रहा है कि वो अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी को और सारे के सारे असबाब को इस्तेमाल करके जो है ना, वो अच्छों को बुरा बना करके पेश कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें सामने दिखाता है या एक्सपोज करता है कि जिससे कि ना हम बदगुमान हो जाए अच्छों के बारे में। ठीक है, तो जिसको तावील करने का फन आता हो ना, अच्छों की बजाहिर गलत बातों की तावील करने का, तो वो इस धोखे से महफूज हो जाता है, और जो नहीं ये फन जानता तो वो फिर बदगुमानी में मुबतला हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तावील अहादीस का फन अता फरमाया, और उनके वालिद के थ्रू उनको ये बात खुशखबरी के तौर पर बताई कि वयुअल्लिमुका मिन तावील अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका, और वो अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम कर देगा, मुकम्मल करेगा, पूरा करेगा। वाला आले याकूबा, और याकूब के जो और आलो औलाद होगी याकूब अलैहिस्सलाम की, यानी जिनको बनी इसराइल कहा गया, उनके ऊपर भी तो अपनी नियमत को जो है मुकम्मल करेगा। कमा अतम महा अला अबवई का, जैसे के अतम उसने मुकम्मल किया उसको, किसको, अपनी नियमत को। ठीक है, हा की जमीर जो है वो नेमत की तरफ पॉइंट कर रही है कि जैसे उसने अपनी नेमत को मुकम्मल किया, अदा अबावई का, ठीक है, तुम्हारे बाप दादों के ऊपर, मिन कबलू, इससे पहले, मिन कबलू का तर्जुमा इससे पहले, बाप दादों के ऊपर मुकम्मल किया। कौन थे वो बाप दादा? इब्राहिम व इसहाक। ठीक है, तुम्हारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे सॉरी पर दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम, जैसे उनके ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल किया था उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बाद की जो नस्लें हैं उनके ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल करेगा। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला है और कामिल हिकमत वाला है, हकीम है। किसी कोई सवाल होगा इस तर्जुमे के बारे में तो फिर आप लिख के पूछ लीजिएगा। आगे हम तो खुलासे तफसील शुरू कर लेते हैं। खुलासे तफसील हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयान कुरान से लेते हैं यहाँ पर। और इसमें जो बैनु सतर यानी अंडरलाइंड अल्फाज होते हैं वो तर्जुमा होते हैं, और जो बैनु कौसैन यानी विद इन ब्रैकेट अल्फाज होते हैं वो मुख्तसर तफसील होते हैं। ठीक है, तो अलिफ लाम रा इसका कोई तर्जुमा नहीं किया क्योंकि ये हुरूफ मुकत्तआत में से है, और उसके बाद जो है तफसीरन लिख दिया कि इसके माने तो अल्लाह ही को मालूम है। ठीक है, उलमा ने बताया कि अल्लाह ताला और नबी अलैहि सलाम के दरमियान ये सीक्रेट है। तो एहतमारी दर्जे में तो इनके मानी कुछ उलमा ने बयान किए हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है ना वो किसी ने मेहनत करके और ये सब नहीं किया है। ठीक है, और जो इसके पीछे ज्यादा पड़ा है उसको एक्चुअली गुमराही का सुनाया गया है कि आप क्यों इसके पीछे पड़ रहे हो। अच्छा, तिलका आयातुल किताब मुबीन, ये आयतें हैं एक वाज़ह किताब की जिसके अल्फाज और मानी अव्वलिया बहुत साफ हैं। तो मानी अव्वलिया बहुत साफ है, तो थानवी रहमतुल्लाह रहे उनके हकीम उम्मत हैं, और इस जमाने के यानी क्योंकि वो हमारे जमाने के कुछ अर्सा पहले ही गुजरे हैं, और अगर हम अपने जमाने को इस तरीके से कैटेगराइज करें, ठीक है, कि कौन सा जमाना इब्तदाई जमाना था दीन इस्लाम का मुसलमानों का, फिर उसके बाद जो है वो वस्त का जो जमाना था दरमियानी जमाना, फिर उसके बाद जो है वो आखिरी दौर या सेकंड लास्ट दौर, आप इस दौर को सेकंड लास्ट दौर कह सकते हैं मुसलमानों का। ठीक है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वैसे तो हमसे 100 साल पहले गुजरे हुए बुजुर्ग नजर आते हैं, लेकिन इस कैटेगरी के हिसाब से वो उनका जमाना और हमारा जमाना एक ही है, ठीक है, क्योंकि वो भी इस दुनिया में जब आए तो मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर काफिर कौमों के गुलाम बन चुके थे, और हम भी उसी दौर के अंदर पैदा हुए जबकि मुसलमान अभी भी काफिर कौमों के गुलाम ही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कैटेगराइजेशन की जाए जमानों की, तो हमारा और उनका जमाना एक ही जमाना है, यानी वो ना तो इब्तदाई इस्लाम के जमाने में दुनिया में आए थे, ना जो है वो उरूजे इस्लाम के जमाने में दुनिया में थे, जबकि मुसलमान जो थे वो दुनिया की वाहिद वर्ल्ड पावर हुआ करते थे। सल्तनत उस्मान थी वो अपने दौर की वाहिद वर्ल्ड पावर थी, सुपर पावर थी, ना हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने की पैदावार या उस जमाने को उन्होंने नहीं देखा, ठीक है ना, बल्कि वही जमाना देखा जो हम देख रहे हैं। अब उसके बाद अगला जमाना उम्मीद इंशाल्लाह बल्कि यकीन है नबी अलैहि सलाम ने क्योंकि बताया है कि फिर से मुसलमान जो है वो दुनिया के ऊपर गालिब होंगे, तो वो फिर अल्लाह जानता है कि हम में से किसी को वो जमाना देखने की तौफीक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहरहाल तो उन्होंने फिर ना मानी अवलिया बहुत साफ है, यानी इसको अव्वल मानी, इसके जो अल्फाज है ना तो वो क्लियर है, अरबी जुबान के लेटर्स भी हमारे सामने वाजे हैं, कोई 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 अजीब सीक्रेट किस्म का कोड नहीं है ये, ठीक है ना, मोर्स कोड किस्म के ठप 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 अजीब, यानी इसको के समझने के लिए जो है वो पता नहीं क्या आपको साइंस पढ़नी पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इसके अल्फाज जो हैं वो अरबी डिक्शनरी के अंदर भी वाजे हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये जैसे कि मुसलमानों को ये तौफीक अता फरमाई कि अरबी जुबान को जो है वो मानी के साथ मुसलमानों ने उसकी हिफाजत करी है, आज भी जो है वो पूरी की पूरी अरबी मौजूद है, कोई भी उसको सीख सकता है, हत्ता कि मुसलमान तो मुसलमान काफिर भी उसको सीख सकता है अरबी जुबान को, ठीक है। तो इस तरीके से जो बिल्कुल जो जो तर्जुमे वाले मानी है ना वो तो बिल्कुल क्लियर है, बाकी इसके बाद मफहूम वगैरह के लिए फिर आपको कुछ इल्म हासिल करना पड़ता है, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं उसके बाद। फिर फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, कि हमने इसको उतारा है कुरान अरबी जुबान का, ठीक है, ताकि तुम, अब तफसीरन बयान कर रहे हैं, अहले जुबान होने की वजह से दूसरों से पहले समझो, ठीक है, तअक़िलून यानी तुम्हारी अकल में ये बात आ जाए, समझ लो, फिर तुम्हारे वास्ते से दूसरे लोग समझें, ठीक है, जो कि बाद में मुसलमान होंगे नॉन अरब जो हैं, तो उनको जो है वो तुम या तो उनकी जुबान समझ करके तर्जुमा करके उनको समझा दो, या वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तुम्हारी जुबान सीखेंगे तो फिर जो है वो तुम उनको अरबी जुबान की तफसीलात बता दोगे और कुरान मजीद की तफसीर उनको समझा दोगे, जैसे तुमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से तुमने इस कुरान को समझा था, तो तुम वास्ता बन करके दूसरों को समझा दोगे। हमने जो ये कुरान आपके पास भेजा है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसन अल-क़सस बिमा अवहैना इलैका हाज़ल कुरान, हमने जो ये कुरान आपके पास भेजा है उसके जरिए से हम आपसे एक बड़ा उमदा किस्सा बयान करते हैं, अहसन अल-क़सस, बड़ा उमदा किस्सा, बिमा अवहैना इलैका हाज़ल कुरान, ये तो हो गया, हाँ, वह इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिन अल-ग़ाफ़िलीन, और इससे पहले आप इस किस्से से बिल्कुल बेखबर थे, क्योंकि ना आपने कोई किताब पढ़ी थी ना किसी मुअल्लिम से सीखा था, यानी नबी अलैहिस्सलाम को वो पढ़ता था और आपसे सुनते थे, ऐसा भी कोई इस किस्म का एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू जो है वो नबी अलैहिस्सलाम गुजरे ही नहीं, इंसानी मुअल्लिम या इंसान की लिखी हुई किताब, ये तो नबी अलैहिस्सलाम का ये सिस्टम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो किस्से की शोहरत भी ऐसी नहीं थी कि आवाम जानते हैं, तो आप भी नहीं जानते थे, आवाम भी नहीं जानते थे। अब जो है ना वो आगाज़ किस्सा, इज़ क़ाला यूसुफ़, वो वक्त काबिले जिक्र है, जब होता है तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी होती है कि वो वक्त काबिले जिक्र है, याद करने के काबिल है वो वक्त, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा या अबती, मेरे अब्बू, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद देखे हैं, उनको अपने सामने सजदा करते हुए देखा है। रईतुली रईतु अहद अशरा का कमर व शमस व कमर और रईतुहुम बीस आज। ठीक है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा उन्होंने जवाब में फरमाया कि बेटा अपने ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान रखा। उसकी तफसीर में लिखते हैं कि क्योंकि वो खानदान नबूवत में से होने की वजह से इस ख्वाब की ताबीर जानते हैं कि 11 सितारे, 11 भाई और सूरज, वालिद और चांद माँ है। ठीक है, खानदान नबूवत में से होने की वजह से, नबी तो नहीं थे ये भाई, खानदान नबूवत में होने की वजह से क्यों? इसलिए कि जब आप किसी माहौल के अंदर रहते हैं ना, इनका खानदान क्या था, सुभान अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है ना, पहले नबी इनके खानदान के कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर उनके बाद जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम, तो जद्दी पुश्ती खानदानी खानदान नबूवत था ये। तो अब जब जद्दी पुश्ती खानदान नबूवत होता है तो बेशक खुद नबी ना भी हो फिर भी माहौल का असर होता है और आपने बहुत सारी चीजें पिक कर ली होती, बहुत सारी चीजें आपने सुनी भी होती हैं अपने बड़ों से, अपनी वालदा से किस्से सुने होंगे, अपने हो सकता है किसी और रिश्तेदार से किस्से सुने होंगे, तो बहुत सारी चीजें फिर आपके आपको जो है ना वो पता चल जाती है। इसी तरह उलमा के घराने के अंदर अगर आप किसी को देखें जो कि खुद आलिम नहीं भी है लेकिन उठना बैठना मजालिस में जाना, इधर सुन लिया, अब्बा हुजूर के मेहमान आए हुए थे उनके साथ बैठ गए, उनको चाय सर्व करने के दौरान ही बहुत सारी चीजें जो है वो बच्चे पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ख्वाब ख्वाब की ताबीर जानते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इनको जो है वो अल्लाह ताला ने सब भाइयों को ख्वाब की ताबीर का इल्म अता फरमाया, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन सा जो है वो एक्सेप्शन हो गई कि उनको ख्वाब का इल्म अता फरमा दिया। ठीक है, नहीं, इनको ख्वाब का इल्म वैसा हासिल नहीं था जैसे कि बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करके किसी को इल्म दिया जाता है, वह भी इल्म जिसको कहते हैं। ये जो ख्वाब का इल्म है ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो बस किसी को दिया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किताबों के जरिए से, कोई फॉर्मूलाज नहीं है इसके। ठीक है, उलमा ने बेशक किताबें उसके ऊपर लिखी हैं कि ये अगर ऐसे हो तो इसका ये मतलब है, ये हो तो इसका ये मतलब है, लेकिन इस इल्म को जो है वो कभी यानी मदरसों में पढ़ाते हुए, मदरसों में से उनको नहीं पढ़ाया जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि बस जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया था तो उन्होंने अगर किताब के अंदर कुछ उसूल और कवायद जो है वो इसके लिख दिए हैं, लेकिन ये ऐसा इल्म नहीं है जैसे कि मदरसों के अंदर किसी को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये गोया कि एक इंट्यूशन वाला है, ठीक है, जो कि किसी शख्स के अंदर ये अल्लाह ताला सलाहियत पैदा कर देते हैं कि वो ख्वाब सुनता है उसको उसका पता लग जाता है इससे क्या मतलब। अच्छा, तो फरमाया कि वो इस ख्वाब की ताबीर जानते हैं, और ये तो बहुत ही क्लियर एविडेंस की बात थी ना कि भाई 11 सितारे हैं और 11 भाई हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के, और सूरज चांद जो है ये तो अम्मा अब्बा हो गए। ठीक है, तो ये तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड ख्वाब ही नहीं था, बहुत सारे ख्वाब होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं। आगे मैंने काफी अच्छी तफसील बयान करी है इसके बारे में। और सजदा करने से मुराद इन सब का तुम्हारे लिए मुती और फरमाबरदार होना है। ठीक है, जाहिर है कोई इंसान किसी के सामने झुकता है तो वो झुकने का मतलब जो है वो उसकी अताअत इख्तियार करना ही होता है। तो वो तुम्हारे ईजा रसानी के लिए कोई खास तदबीर करेंगे, फयकीदू लका कैदा, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए। यानी भाइयों में से अक्सर, क्योंकि 10 भाई अल्लाती थे, उनसे खतरा था। अल्लाती का मतलब क्या कि माँ सेम नहीं थी उनकी, बाप तो सेम थे याकूब अलैहिस्सलाम, लेकिन माँ जो थी वो दूसरी थी, तो उनसे जो है ना वो उनको तुम्हें खतरा, डायरेक्ट खतरा। सिर्फ एक भाई हकीकी बिन्यामीन थे, यानी जिनकी अम्मा जो थी उनकी अम्मा सेम थी, जिनसे किसी खिलाफ का तो अंदेशा नहीं था, मगर ये एहतमाल था कि उनके मुंह से बात निकल जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है और जो है वो यानी गलती से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी को, तो इनसे क्या खतरा है, ये ना चाहते हुए तुम्हारे लिए नुकसान का सबब बन जाए कि दूसरे भाइयों को बता दें। ठीक है, इसी वजह से जो है ना जो जो अहम चीजें होती हैं तो जरा ज्यादा सीक्रेट और जरा ज्यादा अहम बातें जो होती हैं ना, तो उनके लिए सिर्फ ये उसूल नहीं है कि दुश्मन को खबर ना हो जाए उसकी, बल्कि इवन दोस्तों से भी छुपाना होता है। ठीक है, दोस्तों से भी, अब हर दोस्त से नहीं छुपाना होता, ठीक है, कुछ दोस्त जो होते हैं वो साहिबे मामला होते हैं, बाशऊर होते हैं, इल्म और तकवा वाले होते हैं, उनसे नहीं छुपाना उनको, तो बल्कि उनसे तो पूछना होता है, ठीक है ना। उनके साथ तो फसअलु अहल जिक्र इनकुम तुम ला तालमून वाला वाला ताल्लुक होता है ना, कि भाई जिनके पास इल्म है और वो तुम्हारे साथ मुखलिस हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, उनको तो तुम पूछो उनसे जा करके, तो भाई जब बताओगे तभी पूछोगे ना, बगैर बताए तो नहीं आप कुछ पूछ सकते, ठीक है। लेकिन दोस्तों में भी हर दोस्त मेच्योर नहीं होता ना, हर दोस्त उस लेवल का स्टेबल पर्सनालिटी नहीं होती ना, उनसे छुपाना। अभी कुदरतन हमने चंद दिन पहले बच्चों की, बच्चों और बड़ों दोनों की कहना चाहिए बल्कि, जो सीरत क्लास होती है तो उसमें गजवाए अहजाब का वाकया पढ़ रहे थे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची ना कि वो बनू, क्या नाम था, बनू नुज़ैर के बाद जो दूसरा कबीला था जिसके साथ अहज़ाब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का मुआहदा था और वो मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद थे, ये था कि वो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची कि उन्होंने भी वादा खिलाफी कर ली है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अपने दो सहाबा को भेजा था कन्फर्म करने के लिए, ठीक है ना। और क्या कहा था कि अगर वाकई ये खबर सही है कि उस यहूदी कबीले ने वादा खिलाफी कर ली है ना, और हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है, तो वापस आ करके तुम बस इशारों से मुझे बता देना कि हाँ ये खबर सही है, और अगर ये खबर गलत है तो फिर आराम से आके बता देना सबके सामने, बनू कुरैज़ा, जज़ाकुमुल्लाह। बनू कुरैज़ा ने अगर वादा खिलाफी नहीं करी है तो फिर मसला ही कोई नहीं, सबके सामने मुझे बता देना, अच्छी खबर है कि हाँ वाकई उन्होंने वादा खिलाफी कोई थोड़ी करी है, ठीक है ना। तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम यहाँ पर पोशीदा रख रहे हैं इस खबर को, किससे पोशीदा रख रहे हैं, सिर्फ दुश्मन से पोशीदा नहीं रख रहे हैं, सहाबा से पोशीदा रख रहे हैं, दोस्तों से पोशीदा रख रहे हैं, लेकिन हर दोस्त से पोशीदा नहीं रख रहे, सीनियर्स को तो पता है ये बात, और जिन दो सहाबा को खबर लाने के लिए भेजा वो सीनियर्स में से थे, ठीक है। तो इसी तरीके से बिन्यामीन जो थे वो दोस्तों में से थे लेकिन छोटे थे, मेच्योर नहीं थे, उनसे भी पोशीदा रखो, ठीक है ना। अब हम में से कुछ लोगों का पेट जरा ज्यादा हल्का होता है ना, तो वो तो दुश्मनों को भी बता दें, उनका बस ना चले कि वो सारी दुनिया को बता दें हर चीज, है ना। वो कुछ हैं लोग मशहूर माशाल्लाह, हमें भी किसी ने एक दफा बताया खानदान में किसी बुजुर्ग के बारे में, बुजुर्ग तो खैर नहीं मतलब, खैर ठीक है जवान भी कोई नहीं है, लेकिन अगर उनको पता चल गया ना तो फिर तो समझो सब सबको पता चल गया, उनका पेट बड़ा हल्का है, ठीक है। तो उनको तो आप जो है ना वो दोस्ती में, हालांकि दोस्त हैं फिर भी आप ना बताएं उनको, ठीक है। तो ऐसे कुछ मर्द भी होते हैं, औरतों के बारे में तो वैसे ही मशहूर है, बल्कि पता नहीं औरतें जरा ज्यादा बदनाम हो गई हैं सिलसिले में, है ना, कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ तुम किसी को मत बताना, और अगली फिर वो भी आगे जाकर फिर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ तुम किसी को मत बताना, फिर वो आगे बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ तुम किसी को ना बताना, इस तरह जो है ना वो खबर फैलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्दों को अल्लाह ताला ने कवाम तो बनाया है, लेकिन हम चूंकि रिजाल हैं तो फिर हम भी जो है ना फिर वो औरतों वाली फिर हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का तो बस ना चले कि वो दुश्मनों को भी सारी बातें बता दें, और बाकी जो है ना उनका बस ना चले कि चलो दुश्मन से तो बड़ी मुश्किल से बचाया है लेकिन दोस्तों को बताना जरूरी है। अब जिधर बैठेंगे सारे दोस्तों के साथ बैठते हैं उधर बता दिया, है इनको बीबीसी भी कहा जाता है, ठीक है, जो भी कहें सीएनएन कहें बीबीसी में, तो इसमें ना बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसमें जो चीज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है ना वो हमारी अपनी जुबान होती है, हम जुबान के जो है ना वो हल्के होते हैं तो अब हमसे संभाली नहीं जा रही होती, इस वजह से चुप रहने के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। ये चुप रहना जो है ना ये एक ऐसा ऐसा हुनर है कि जो इसको सीख लेता है ना वो बहुत सारे शुरूर से बच जाता है, ठीक है ना। अब वो पहले सोचेगा, पहले तोलेगा, फिर उसके बाद बोलेगा, तो अब उसको मौका मिल जाएगा ना कि अच्छा मुझे फलाने शख्स के सामने ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और जिसने जो है वो सोचना बाद में होता है बोलना पहले होता है, यानी उसकी जुबान उसके काबू में नहीं है, तो फिर वो बाद में पछताता है कि अगर तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था बोल दिया, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह फायदा होगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरबियत फरमा रहे हैं, ठीक है, कि किसी भाई को मत बोलना, ठीक है, और उसकी वजह भी बता रहे हैं, फयकीदुल का कैदा, और फिर उसके बाद उसकी असल वजह भी बता रहे हैं। एक तो होती है यानी टर्शरी वजह, सॉरी क्या कहते हैं ट्रांजिशनरी वजह, ठीक है ना, कि तुम्हारे भाई तुम्हारे खिलाफ, फिर उसके बाद होती है असल वजह कि शैतान, बिला शुबा शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। ठीक है ना, कि देखो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कैसे तरबियत करी है कि पहले तो जाहिरी असबाब के बारे में तरबियत करी। जाहिरी असबाब कौन है? भाई, जो कि तुम्हें चाहते हुए या ना चाहते हुए नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद ईमानी तरबियत फरमा रहे हैं। शैतान तो जाहिर नहीं होता ना, शैतान तो नजर नहीं आता ना, ठीक है ना। इसको कहते हैं ईमानी तरबियत, कि जो अनदेखी चीजें हैं लेकिन हमें खबर से बताई गई हैं वो बातें, ठीक है ना। तो अपनी औलाद को उनके बारे में भी अवेयरनेस देना, उनको उनके बारे में भी याद दहानी कराते रहना, ठीक है ना। इसको ईमान बनाना भी कहते हैं आसान जुबान के अंदर, ईमान बनाना। शैतान का इल्म देना ये ईमानी तरबियत के अंदर आता है, ठीक है ना। और भाइयों के साथ ख्याल करना ये सियासी तरबियत में आप कह सकते हैं इसको, यहाँ भी लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे कैसे जो है वो मामला करने, ठीक है ना। ये आपका यानी आपका इस्लाती तरबियत भी कहला सकता है, और यहाँ पे जो खतरे का अंदेशा था तो उसको सियासी तरबियत भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए बाप जो है वो अपनी औलाद की कैसे तरबियत कर रहा है, क्या हम अपने औलाद की ऐसी तरबियत करते हैं राइट, क्या हमारी औलादों की ऐसी तरबियत होती है? हमारी तो नहीं हुई, नहीं हुई, जिसकी भी नहीं हुई तो भाई गुजर गया ना वो वक्त, अब आगे तो कम अज कम उस गलती को हम रिपीट ना करें ना, ठीक है। तो औलाद की तरबियत करेंगे तब फिर उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशन रखना, फिर उसकी समझ भी आती है। तरबियत कोई नहीं करी, एक्सपेक्टेशन सारी की सारी अच्छी रख रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हमारी बेवकूफी हुई ना। अभी आप में से हर एक के साथ तो हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन जिनके साथ शेयर किया है और बाकी के साथ हम जुबानी तौर पर बयान कर देते हैं कि हदीस मुबारका के अंदर एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमने नबी हम भरपूर जवान थे और नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहते थे, ठीक है। हम भरपूर जवान थे और नबी अलैहिस्सलाम, एक मिनट नजर आओ उस हदीस को पुल आउट भी कर लूँ। हाँ ठीक है, तरबियत की बात निकली आई है तो 2-4 मिनट से मजीद लगा लेते हैं। हाँ, फरमाया हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला, ठीक है, उन्होंने फरमाया कि हमें नबी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब हुआ जबकि हम भरपूर जवान थे, ठीक है, ये नौजवान सहाबा में से थे। तो हमने कुरान का इल्म हासिल करने से पहले ईमान सीखा, हमने नबी अलैहिस्सलाम से कुरान का इल्म हासिल करने से पहले ईमान सीखा। क्या मतलब, कुरान क्या ईमान नहीं सिखाता? नहीं, सोहबत की बात हो रही है। और कुरान सीखने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कुरान के अंदर जो मसले मसाइल हैं, कुरान के अंदर जो 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 फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, और जो जो हाउस हाउ टू डूज व्हाट नॉट टू डूज राइट, उससे पहले हमने ईमान सीखा। क्या ईमान कोई अलग चीज है? हाँ, यहाँ पर उस ईमान की बात हो रही है कि अल्लाह ताला की मारिफत सीखी। अल्लाह ताला नजर आने वाले नहीं है, ठीक है ना। फरिश्तों के बारे में सीखा कि फरिश्ते अल्लाह ताला का काम करते हैं। आखिरत के बारे में हमने सीखा, ठीक है, कि आखिरत की अवेयरनेस क्या चीज होती है, आखिरत की फिक्र क्या चीज होती है। हमारी फिक्रें जो है वो आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो गई, ये सोहबती इल्म से हासिल होता है। ये कैफियात होती है मारिफत इलाही, आखिरत की फिक्र राइट, दुश्मन से बचने की फिक्र, शैतान के बारे में पता होना कि जो दुश्मन है ये भी ईमानी तरबियत है। तो सहाबा कराम क्या फरमाते हैं कि हमने ईमानी तरबियत पहले हासिल करी, उसके बाद फिर हमने पुरानी उलूम हासिल किए, ठीक है, कि फलानी चीज कैसे करनी है, फलानी चीज कैसे करनी है, और क्या हलाल है क्या हराम है। क्योंकि कुरान के अंदर मेजर क्या चीज है? अहकाम राइट, अवामिर और नवाही, ठीक है। तो फरमाते हैं कि हमने कुरान का इल्म हासिल करने से पहले ईमान सीखा, फिर हमने कुरान सीखा, तो उससे हमारे ईमान में इजाफा हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर ईमान सीखे बगैर कुरान सीखोगे तो फिर शैतान जो है ना वो तुम्हें गुमराह भी कर सकता है, कुरान के अंदर कीड़े निकलवाएगा, कुरान के अंदर तुम्हें जो है ना वो यानी मिस्टेक्स दिखलवाएगा, ठीक है ना, और इससे जो है ना वो तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर ईमान सीखे बगैर कुरान सीखोगे तो तुम्हें ईमानी नुकसान भी हो सकता है, हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है। तो सहाबा की तरतीब थी ईमान पहले कुरान बाद, और हमारी क्या तरतीब है? हमारी तरतीब जो है हमारी इसके अंदर ना तो ईमान आता है औलाद की तरबियत के अंदर, और ना तो कुरान आता है, बल्कि हमारी औलाद की कहाँ से शुरू होती है? अंग्रेजी पढ़ने से, राइट? और जो है वो साइंस पढ़ने से, ठीक है? ईमान की अलिफ बे भी नहीं पता, आखरत की तरफ, आखरत का तसव्वुर अल्लाह ताला का, राइट? और जो बहुत जरूरी तरीन बुनियादी चीजें, बिल्कुल औलाद को कुछ नहीं पता होता, और हम उसको डायरेक्ट काफिरों की बनाई हुई और काफिरों की बताई हुई साइंस पढ़ाते हैं। और उस साइंस के अंदर क्या बताया जा रहा होता है, इस क्लास के अंदर हम पहले भी जो है वो उसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, हजरत न्यूटन, राइट, हजरत आइंस्टाइन है, और हजरत फलाने और हजरत ढिमकाने, उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने ये फरमाया, ठीक है ना? तो अब जो औलाद जिसका ईमान बना ही नहीं है, तो कुरान सीखना तो दूर की बात, वो तो डायरेक्ट जो है वो काफिरों की बताई हुई साइंस को आप वो पढ़ रहा होता है, तो उसके बाद जो है ना उसका रही सही कसर भी जो है वो पूरी हो जाती है, और वो बुनियादी चीजों की नफी करना शुरू हो जाता है, बेशक सोशल प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, वो कहे कुछ ना, लेकिन उसका मुतजलजल हो जाता है, उसकी जो है ना वो यानी दरारें पैदा हो जाती हैं उसके दीन के अंदर, ठीक है? तो तरतीब ये नहीं थी भाई, जिस तरतीब को काफिर ने हमारे ऊपर ठोसा हुआ है, और हम उसी को लेके चल रहे हैं, और उसको फर्ज वाजिब लेकर के चल रहे, समझ करके चल रहे, और हम उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी वजह से हमारी नस्लें जो है उनका ईमान खत्म हो चुका है, या वो काफिर हो चुकी हैं, या वो मुल्हिद हो चुकी हैं, या वो एथियस्ट हो चुकी हैं, या उनका बिल्कुल एतमाद खत्म हुआ है, बस ऊपर से जो है वो सोशल प्रेशर्स की वजह से जो है वो कुछ अफाल कर लेती हैं, क्योंकि अम्मी हुजूर किया करती थी और अब्बा हुजूर किया करते हैं, इस वजह से मुझे भी कर लेना चाहिए। हम तो इसको एडमिट ही करने के लिए तैयार नहीं है ना, तो फिर आगे इसकी तसी कैसे करेंगे? कम अज कम गलत को गलत मानो तो सही यार, अल्लाह के बंदे, भाई तस्लीम तो करो, फिर अल्लाह ताला से मदद मांगो, अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे, काम करवाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं है ना, लेकिन मानना ही नहीं है। जब मानना ही नहीं है तो फिर कहां से अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, ठीक है ना? तो ईमानी तरबियत, याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की ईमानी तरबियत फरमा रहे हैं, ठीक है? और यही तरतीब है, ईमानी तरबियत पहले होगी, फिर उसके बाद उलूम की बात आएगी, तो कुरान पढ़ के ईमान में इजाफा होगा। ये जो हजरत जुंदब बिन अब्दुल्ला कह रहे हैं, कुरान पढ़ के हमारे ईमान में इजाफा हुआ, जब ईमान बन जाएगा साइंस पढ़ के, जो कि काफरों की बनाई हुई साइंस है, उसी साइंस को पढ़ के ईमान में इजाफा होगा, और गलत अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उस गलत चीज को जो है वो बुरा समझेगा, अलग कर देगा कि नहीं, ये ईमान से ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन दिस, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, ठीक है ना? जो गलत बात साइंस में लिखी होगी उसको वो रिजेक्ट कर देगा, और जो सही बात साइंस में लिखी होगी जो कि किसी भी ईमानी बात से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है, उसको पढ़ेगा अल्लाह की जात में, और इसका ईमान बढ़ेगा, वाह वाह करेगा, या मेरे मौला क्या तेरी शान है, क्या तूने चूटी बनाई, क्या तूने मक्खी बनाई, क्या तूने जो है वो सैयारे बनाए, क्या तूने निजाम बनाया, अल्लाह अकबर कबीरा, राइट? अपनी हकीकत उसके सामने खुलेगी कि मेरी क्या हैसियत है इतने बड़े निजाम के अंदर, अल्लाह ताला इसको चलाने वाले हैं, मैं अपने आप को क्या समझ सकता हूँ अपने आप को, आजिज़ी पैदा होगी उसके अंदर, अल्लाह की अजमत पैदा होगी उसके अंदर, लेकिन ये कब होगा? जब ईमान पहले बना होगा, राइट? आज कौन जो है वो अपने बच्चों के ईमान बनाने के ऊपर मेहनत कर रहा है, ठीक है ना? एक रटी रटाई की बातें पढ़ देने से ईमान खाली नहीं बन जाता ना, और ये काम माँ बाप ने करना होता है, हर चीज के लिए हजरत वाला नहीं आ जाएंगे, शेख साहब नहीं आ जाएंगे आपके बच्चों का ईमान बनाने के लिए, बच्चों का शेख उसका बाप होता है, उनका बाप होता है, और जो सब शेख होती हैं वो अम्मा हुजूर होती हैं, ठीक है ना? तो अम्मा अब्बा अपने ईमान बनाने के ऊपर पहले मेहनत करें, और फिर बच्चों के ईमान बनाने के ऊपर मेहनत करें, ठीक है? इस नसीहत और वसीयत के साथ इंशाल्लाह हम इस क्लास को खत्म करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।